हाथ की ताली से हम सभी अपनी जगह पर एक बार खड़े हो जाएंगे। खड़े होते हैं तो ये एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, खड़े हो जाएं और एक हाथ की ताली से, दीदी भी आपको कर रहे हैं और दीदी भी देखो आपको थैंक्स किया। बड़ों की ब्लेसिंग सदा हमारे साथ होती है। तो यहाँ पर द पावर ऑफ हैप्पीनेस दीदी दे रहे हैं, आप भी रिसीव कर लो, ठीक है। और फिर बैठिए, थैंक यू सो मच, आप बैठे। तो अभी हम अलका दीदी से कहेंगे कि अलका दीदी आप इस प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट भी है बहुत सुंदर, इस पे क्लास होगी और उसके बाद तनुजा दीदी हमारे बीच में आएंगे कि इस जो क्लास करा रहे हैं ये एक प्रोजेक्ट कैसे चलने वाला है, इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है और किस तरीके से आप भी इस प्रोजेक्ट में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो वो इस क्लास के बाद तनुजा दीदी भी आपको मिलेंगे, फिर हम बाबा को याद भी करेंगे।
ओम शांति। तो सभी ने अनुभव कर लिया है गीत सुनते सुनते कि खुशियां हमें कब कब मिलती हैं और कब हम अनुभव करते हैं। तो जब जब हम बाबा से मुलाकात करते हैं तो बाबा हमको खुशियों से भर देता है। अब ये खुशियों का सागर जो में मिला हुआ है, रोज खुशियां भर भर करके देता है, तो उन खुशियों के अंदर हम बच्चे अपने आप को सदा रखना चाहते हैं। चाहना हमारी है कि हम सदा खुश रहें। तो ये खुश रहने की चाहना हमें अपने आप से पूर्ण करवानी है, तो इसके लिए हमें कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता है, जो अभ्यास हमें स्वयं ही स्वयं से कराना होगा। समय का बहुत परिवर्तन फास्ट हो रहा है। पहले था कि हम चाहते थे कि कोई हमारे से कराए, लेकिन अब समय है कि हमें अपने आप से कराना है। जिसे बाबा कहते आप स्वयं ही टीचर और स्वयं ही स्टूडेंट बन जाओ। तो जब ये अभ्यास हम अपने आप से करवाएंगे तो ही हमारी खुशी सदैव कायम रह सकती है। तो खुशी के लिए हम बाबा के उन महावाक्यों पर नजर डालें कि बाबा हम बच्चों को कहता है साकार मुरली में भी कि बच्चे तुम्हारा खुशी का पारा बहुत चढ़ा हुआ होना चाहिए। तो जैसे पारा हमें दिखाता है ना, तो बाबा हमें हमारा खुशी का पारा देखना चाहता है। तो जितने हम खुश होंगे उतना हमारा पारा चढ़ा हुआ होगा। और खुश कब होते हैं हम? जब हम अपने इस अलौकिक यात्रा का आरंभ अपने आप को याद दिलाए कि जब हम बाबा के घर में आते हैं, कई तो पहली बार मधुबन में ही आए होंगे, कई पहली बार सेंटर पर आए होंगे, लेकिन जैसे ही हम इस अलौकिक दुनिया में आ जाते हैं, बाबा के इन सेवा स्थानों पर पहुंच जाते हैं, तो वहां का एक वायुमंडल, वहां की एक भाई बहनों से मुलाकात जो हम बच्चों की होती है, उसमें जो हमें रूहानियत का अनुभव होता है, तो हम पहले दिन ही बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार तो एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, बोला मुझे बहन ने कहा आओ बैठो, बोला इतना रिस्पेक्ट तो कोई नहीं देता है बाहर, और सेंटर पर मैं आया और मुझे कहा आइए बैठिए। तो जैसे हम देखते हैं कि आज आत्माओं को क्या चाहिए और वो कैसे देना है, जैसे बाबा ने हमें तो अपने नेचुरल लाइफ में सिखा दिया है कि हर आत्मा को रिस्पेक्ट चाहिए ताकि उसको उसकी खुशी मिलेगी, और हमें तो बाबा रोज ही रिस्पेक्ट देता है। रोज हमें बाबा मीठे बच्चे कहते, बहुत सुंदर मीठी बातें सुनाते हैं, हमारा जीवन मीठा बना देते हैं। कितना भी मूड बदला हुआ हो लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो क्या हो जाता है, मूड बदल जाता है ना। जो बिगड़ा हुआ मूड था वो बाबा के घर में आते हैं, मुरली सुनते हैं, मुरली से हम अपने आप के मूड को ठीक कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी जो खुशियां जो सागर के रूप में बाबा से हमें मिली है, फिर भी हमारी खुशियां क्यों चेंज हो जाती है, मूड क्यों बदल जाते हैं हमारे? तो हम तो सहज ब्राह्मणों की भाषा में कहते हैं कि माया है ना, ये माया की दुनिया है, माया आती है तो हमारा मूड बदली कर देती है। तो जैसे हमें खुशियों की प्राप्ति, खुशियां दिलाने वाली बातें जो है हमें याद आती है, तो हम अपने आप के मूड को बहुत अच्छा बना लेते हैं, और प्राप्ति ही हमारे जीवन की खुशियों का अनुभव कराती है। तो सबसे अपने आप को पहले चिंतन में हमें लाना है कि मैंने इस संगमयुगी जीवन के अंदर क्या क्या पाया है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे प्राप्तियों की लिस्ट बना लो, और जब हम प्राप्तियों की लिस्ट अपने अनुभवों के आधार से बनाते हैं कि मुझे क्या मिला बाबा से पहले दिन से लेकर के आज तक, मैंने बाबा से क्या क्या पाया है, और जब हम अपनी ही प्राप्तियों की लिस्ट अपने सामने रखते हैं और वो प्राप्तियों को हम देखते हुए अपने आप से पूछे जिसके पास इतनी अथाह प्राप्तियां हैं उसकी खुशी का तो पारावार नहीं होना चाहिए, वो खुश नमा दिखाई देना चाहिए। और सबसे बड़ी प्राप्ति जो है, हमने भगवान को अपना बना लिया। जब बाबा ही अपना बन गया है तो और कुछ पाने का तो बाकी रहा ही नहीं है। तो बाबा मिला, इसकी महसूसता जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो महसूसता हमें बहुत खुशी दिलाती है। कुछ समय के बाद ब्राह्मण जीवन के अंदर बाबा माना एक फैमिली मेंबर हो जाता है और हम बाबा के साथ बहुत सामान्य रीति से चलते हैं। तो कहते भी हैं बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ये कहा, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस जो हमारे जीवन के अंदर जितना होना चाहिए उतना हम नहीं देते हैं। तो वो बातें, वो जागृति हमें अपने मन में बार बार लानी चाहिए कि भले बाबा आज हमें बहुत प्यार के सागर के रूप में मीठे बच्चे कहकर, लाडले बच्चे कहकर के बहुत ही स्नेह से आज हमें बाबा ये बातें सुना रहे हैं, लेकिन इन बातों के ऊपर हम अपना करके चलने के बाद ही जो हमारी भविष्य जीवन है जो सदा खुशियों से भरी हुई है, सतयुगी जीवन को हम अपने याद करें कि वहां कितनी प्राप्तियां हैं। बाबा ने कहा वो भी जीवन ऐसी है जहां पर सब प्रकार की स्थूल में प्राप्तियां हैं और संगम और सतयुग के अंदर ये अंतर है कि ब्राह्मण जीवन में भी कोई अप्राप्त ऐसी कोई चीज नहीं है, बाबा ने कहा। और वो हम अनुभव करें कि जब भगवान मिला है अब कौन सी चीज के अप्राप्ति आत्मा फील कर रही है, और जो अप्राप्ति बाबा के बनने के बाद अपने जीवन में हम महसूस कर रहे हैं और उसको हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, बार बार उसी पर हमारा ध्यान जा रहा है, तो वो अप्राप्ति का संस्कार हमारा बन जाता है और हम सदैव उस कमी को महसूस करते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे ये नहीं मिलता है। तो वास्तव में हमें सब कुछ पाना है एक बाबा से, किसी भी मनुष्य से नहीं पाना है, हमें सब कुछ बाबा से प्राप्त हो रहा है। तो जो बाबा से प्राप्त हो रहा है वो अगर हम बाबा से ही प्राप्त करने का अनुभव करते हैं तो हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं जो है वो समाप्त हो जाती है। तो हम संपूर्ण रीति से बाबा से न लेते हुए हम कुछ एक प्राप्तियां जो है मनुष्य से लेने की अपेक्षाएं रखते हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार के अंदर हम सोचते हैं कि दीदियों से हमको ये मिलना चाहिए, बड़े दादियों से, बड़े भाइयों से हमको ये मिलना चाहिए, तो हम ये अपेक्षाएं रखते हैं और समय के अनुसार हम देखते हैं कि ये सारी अपेक्षाएं हमारी अभी पूर्ण होने का समय जो था वो अभी नहीं रहा है। क्योंकि एक समय था जो दादियां या बड़े जो भी थे व्यक्तिगत भी बहुत समय दे सकते थे और आज के समय के अनुसार वो पालना समय के अनुसार ड्रामा में ही समाप्त हो चुकी है। जैसे बाबा ने कहा ना कि बच्चे टू लेट हो गए हैं, तो हम कई बातों में टू लेट हो चुके हैं और जो बातों में टू लेट हो चुके हैं उन्हीं बातों की आशाएं अपेक्षाएं अगर आज हम डिमांड करते हैं या रखते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। हम अगर यही कहेंगे कि दादी ऐसी करती थी, दीदी ऐसी करती थी, लेकिन वो जो पालना थी वो पालना अब सिर्फ हमें प्राप्त करनी है, तो अपनी अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त वतनवासी जो हमारी बाप दादा के साथ दादियां बैठी हुई है, वो सब हमें अमृत वेले वो पालना दे रही है। समय भी उसका मुकरर हो चुका है, स्पेशली अमृत वेले का। तो जब हम देखते हैं कि ये जो समय का परिवर्तन है, इसको हमें समझ करके प्राप्ति की अपेक्षा रखनी आवश्यक है, और हम समय को नहीं पहचान पा रहे हैं और हम प्राप्तियों की इच्छाएं रख रहे हैं, तो इच्छा हमको भटकाती रहती है। यहां नहीं मिला तो दूसरी जगह, यहां नहीं मिला तो तीसरी जगह। तो हम मन से भी भटकते हैं, कई तो तन से भी भटकते हैं। एक सेंटर पर नहीं मिला, दूसरे सेंटर पर चले गए, दूसरे सेंटर पर नहीं मिला, तीसरे सेंटर पर चले गए। तो माना भटकने की जो आदत है, जैसे हमारी भक्ति में भटकने की आदत थी, बाबा ने छुड़वाई, लेकिन अब हम ज्ञान में भी ऐसे भटकना शुरू करते हैं जहां हमारी खुशियां समाप्त हो जाती है। बाबा ने हम बच्चों के लिए जो भी बाबा के सेवा स्थान बने हैं, वो हमारे लिए बनाए हुए हैं, और उन सेवा स्थानों से बाबा हम बच्चों की जो रूहानी पालना कर रहा है, वो पालना ही मेरे लिए निश्चित हुई है ड्रामा के अंदर। और मुझे अपनी अवस्था को बना करके अब उन प्राप्तियों का अनुभव करना है। स्थान छोटा हो बड़ा हो, पालना करने वाले छोटी बहने हो बड़ी बहने हो चाहे जो भी हो, लेकिन बाबा ने कहा निमित्त तो मैं किसको भी बनाऊंगा। बाबा की साकार मुरलियों में ये बातें आती थी कि अगर 14-15 साल की कन्या भी बैठ करके अगर मुरली सुनाएंगे, तो बाबा ने कहा वो तो मैं ही करा रहा हूं तभी काम। आपको दिखाई दे रही है छोटी, लेकिन मुरली किसकी है? मुरली तो बाबा की है। तो जब हमारे बुद्धि के अंदर ये बात पक्की हो जाती है कि मुरली बाबा की है, यज्ञ बाबा का है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाबा के लिए कर रहे हैं, और बाबा मुझे इसका ही पदम गुणा रिटर्न मुझे ही करने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमने किया और हमारा प्रारब्ध जो है किसी और को मिलने वाला है, वो हमें ही मिलने वाला है। तो जब हम इन बातों को हम अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा देते हैं, तो हम बहुत दिल से अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, दिल से हम सेवाएं भी कर सकते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे कोई भी कार्य आप करो, भले सेवा भी कर रहे हो, लेकिन अगर कोई सेवा आपको खुशी नहीं दिलाती है तो वो सेवा सेवा नहीं है, आपके लिए तो सेवा नहीं है। अगर खुशी नहीं है आपको उस सेवा से, तो आप वो सेवा नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जो है वो है खुशी। अगर मैं यथार्थ स्वरूप में टिक करके श्रीमत के अनुसार अगर कोई सेवा का कार्य कर रही आत्मा, तो मुझे उसकी खुशी जरूर मिलेगी, चाहे वो सेवा बहुत साधारणते साधारण भी क्यों न हो, चाहे वो सेवा बहुत बड़ी क्यों न हो। लेकिन उसके लिए चाहिए हमारी स्व की स्थिति। अगर हमारी स्व स्थिति बहुत ऊंची है, भावनाएं बहुत ऊंची है, तो हमें उसकी प्राप्ति जो होंगी वो खुशी होंगी। चाहे यज्ञ के अंदर जो भी सेवाएं होती है, तो हम सोचते हैं कि मैं फलाना हूं मैं फलानी हूं, तो मेरे लिए तो ये सेवा योग्य है ये सेवा अयोग्य है, ये सेवा तो फलाने के लिए होती है ये सेवा तो मेरे लिए होती है, मैं फलाना हूं तो मेरे लिए ऐसी सेवा चाहिए। लेकिन ये जो अपेक्षा है हमारी, ये हमारा बॉडी कॉन्शियस से देह अभिमान है, और उस देह अभिमान के कारण, इस मैपन के कारण, जो आज हम देखते हैं कि अपनी खुशी को गुम करके बैठ जाते, और ये मैपन ही चॉइस करना शुरू करता है कि ये सेवा ऊंची है, ये सेवा कनिष्ठ है, ये सेवा मध्यम है, लेकिन बाबा ने तो हर सेवा को फुल मार्क्स दिए हुए हैं। बाबा ने चारों सब्जेक्ट को एक जैसे मार्क्स दे दिए हैं, चाहे आप भाषण कर रहे हो, चाहे बाबा ने कहा बासन मांज रहे हो, बर्तन घर सफाई कर रहे हो, दोनों को मार्क्स एक जैसे हैं। अगर जो भी सेवा मिले हमको, चाहे बर्तन साफ करने की सेवा मिली है, वो भी इतनी ही खुशी से करना है जैसे आपको भाषण करने की सेवा मिली है, उसमें आप खुश होते हो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, खुशी आपके किसी भी स्तर पर कम नहीं होनी चाहिए, सेवा सेवा ही है। लेकिन हमने अपने बुद्धि के अंदर सेवा के कोई ऐसे इमेज बना लिए हैं कि ये सेवा वीआईपी सेवा है, ये सेवा फलानी सेवा है, ये सेवा वो है। यज्ञ है हमारा बेहद का घर बाबा का। जैसे घर में जो आवश्यक होता है वो कार्य सब हम करते हैं, चाहे उस समय पर सफाई करने का भी काम घर में करना हो तो कर लेंगे, जो भी कार्य करना हो अपना घर समझ के कर लेते हैं। वैसे ही जब हम इस बेहद यज्ञ को अपना घर समझते हैं और इसमें जो भी ड्रामा में सेवा का पार्ट हमको मिला हुआ है, अगर उसको हम बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं तो हमारी इसमें बहुत उन्नति है। तो इसमें कैसी उन्नति है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो सारा ये सेवाएं करते करते ही समाप्त होना है। अगर हमें कोई सफाई की सेवा दी गई है और हम कहें कि ये सेवा के लिए थोड़ी हम यज्ञ में आए हैं, लेकिन हो सकता है वही सेवा मेरे कार्मिक अकाउंट को समाप्त करने वाली है और इसलिए ड्रामा ने बड़ों को निमित्त बनाकर या किसी को भी निमित्त बनाकर हमें कुछ समय के लिए वो सेवा दी हुई है। मुझे एक बार की बात याद है कि 1983 में कुमारियों की भट्टी थी, सिर्फ कुमारियां थी, और मेडिटेशन हॉल में बाबा कुमारियों से पूरे रात भर पर्सनल मिल रहे थे, एक एक से मिल रहे थे और एक एक कुमारियों से पूछ रहे थे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी बातें, पढ़ाई से लेकर के सब कुछ बाबा पूछताछ कर रहे थे। तो उसमें सभी प्रकार की थी, कई पढ़ने वाली थी, कई नौकरी करने वाली थी और कई सेंटर पर रहने वाली भी थी। तो तीनों प्रकार की बहनें थी उसमें। तो उसमें जो बहनें नौकरी करने वाली थी उनसे जैसे बाबा ने बात की तो बाबा ने पूछा उनको, क्यों नौकरी करनी पड़ रही आपको? बाबा नौकरी की टोकरी कुमारियों के सिर पर देखना नहीं चाहते हैं, मतलब जिसमें बाबा खुश नहीं है उसमें हम खुश रहे तो वो खुशी हमारी अविनाशी नहीं बन सकती है। और इस संसार के अंदर बाबा ने हर बच्चों के लिए अपना अपना पार्ट ड्रामा में दे दिया है। तो जैसे बाबा कहता है कि बाबा चाहता है कि कुमारियां तो इस विश्व सेवा में लग जाए, तो जैसे उस कुमारी ने अपनी कोई घर की प्रॉब्लम्स बताई कि लौकिक पिता नहीं है और भाई छोटा है और मैं घर में बड़ी हूं, तो बाबा मुझे इसके लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो बाबा ने बहुत प्यार से उसको कहा, बच्ची भाई तो बड़ा हो ही जाएगा ना थोड़े दो चार साल में, तो जब वो बड़ा हो जाएगा ना धीरे धीरे जिम्मेवारी उसके ऊपर डालते जाना और आप अपने आप को इस बंधन से मुक्त कर देना। बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से बाबा ने स्टेप बाय स्टेप जैसे उसको बातें सुनाई कि वैसे ऐसे ऐसे करके बच्ची तुम सेवा में लग सकती है। तो जैसे दूसरी बहन जो थी बाबा से मिल रही थी, नई नई कुमारी थी सेंटर पर रहने वाली, उसने बाबा को कहा, बाबा मुझे भाषण करने का बहुत शौक है लेकिन मुझे तो सारा दिन किचन में रहना पड़ता है। बहुत घरेलू बातचीत बाबा की और बच्चियों की सबकी चल रही थी, पूरी रात बाबा मिल रहे थे। तो बाबा ने उस बच्ची को कहा कि बच्ची ये जो सेवा तुमको मिली हुई ना, यही सेवा तुमको आगे बढ़ाने वाली है। कुछ दिन तक तुमको ये सेवा करते करते बहुत सुंदर अभ्यास करना है। जैसे बाबा ने बहुत अच्छा उसको लक्ष्य दे दिया और कहा, बच्ची बाबा तुम्हारी इच्छा या तुम्हारी योग्यताओं को देख करके जरूर तुम्हारी ये जो इच्छा है कि मुझे भाषण भी करना है, तो बाबा ने कहा वो तो होना ही है, भाषण करना ही है, बहुत भाषण करना है, आगे चल के तो बहुत सेवा करनी है तुमको, तो ये जो सेवा मिली है इसी सेवा से बाबा ने कहा आपका आगे का मार्ग क्लियर हो जाएगा। माने हमारी कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसे बने हुए होते हैं जिस अकाउंट को समाप्त करने के लिए कुछ हमारे द्वारा ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है, जो वो सेवाएं करने के बाद हमारा कार्मिक अकाउंट समाप्त हो जाता है। जो बुद्धि के ऊपर कोई जड़त्व होता है, बुद्धि हमारी क्लियर नहीं होती है, वो सारा जैसा समाप्त हो जाता है और जो हम करना चाहते हैं वो बहुत खुशी से कर सकेंगे। तो हम कर तो रहे हैं, लेकिन सारी ही नॉलेज बाबा ने जो हम बच्चों को दे दी है, उस नॉलेज को अच्छी तरह से हम मनन चिंतन करते हुए उसके बाबा के एक एक महावाक्यों के पीछे जो हमारे लिए बाबा ने लक्ष्य बनाकर दिया है या प्राप्तियों के लिए बाबा ने जो विधियां बना के दी है, अगर उनको हम बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सेवा से बहुत प्यार होगा, पुरुषार्थ से भी हमें उतना ही प्यार होगा। क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि बच्चे जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार है। अगर मुरली से प्यार है तो मुरली से प्यार मतलब ये नहीं है कि आजकल तो हम देखते ना चलते फिरते मोबाइल में मुरली बजा दी है और सुन लिया चले गए, किन बाबा ने मुरली में ये कहा है कि बच्चे बाप बैठकर बच्चों को समझाता है, बाबा बैठ के सुना रहा है और हम बच्चे क्या कर रहे हैं, चलते फिरते काम करते हुए मुरली सुन रहे हैं। तो ये विधि नहीं है मुरली सुनने की, मुरली सुनने की विधि है कि जब बाबा बैठ करके मुरली सुना रहा है तो मुझे भी मुरली बैठ करके सुननी चाहिए। क्योंकि बैठकर जब हम सुनते हैं तो हमारी मन और बुद्धि एकाग्र हो जाता है, हम अपने आप को पूर्ण रीति से बाबा के सामने अपने आप को मौजूद रखते हैं और हम पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुरली माना पढ़ाई है। अगर मुरली ही हमने अच्छी तरह से पढ़ी नहीं है, मुरली अच्छी तरह से नहीं सुनी विधिवत, बाकी तो हमारा कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मुरली हमें बता देती है कि हमारी खुशियां कहाँ कहाँ क्षीण हो गई है, कौन सी बात के कारण हम दुखी हुए, कौन सी बात के कारण हम नाराज हुए। हो सकता कल किसी ने मेरे कर्मों में मुझे करेक्शन किया हो, किसी ने मुझे एक सुधारने के लिए कोई बात बताई हो, और उस घड़ी अगर हमारी देहभान वाली स्थिति होती है तो वो स्थिति हमारी खुशी को गायब कर देती है। और तब हम यही सोचते हैं कि अभी हम कोई नए हैं क्या ज्ञान में, अभी हम तो पुराने हो चुके हैं, अभी हम तो इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं, क्या हमको ये बात पता नहीं है क्या। ज्ञान पता है, पॉइंट्स पता है, लेकिन जब कर्मों में नहीं है, कर्मों में कोई गलत दिखाई दे रहा है, और ये ब्राह्मण परिवार जो है वो मेरा शुभचिंतक है, ब्राह्मण परिवार जो है मेरे प्रति शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखता है, अगर उसने मुझे कोई बात में करेक्शन किया भी, चाहे परिवार से किसी ने करेक्शन किया या बड़ों ने निमित्त आत्माओं ने हमारा कोई करेक्शन किया, तो उस करेक्शन को हम उस समय पर बहुत प्यार से स्वीकार करें तो वो हमारी जो स्थिति है वो स्थिति हमारी कुछ मैपन के कारण नहीं बन पाती है। और जब हमारी वो खुशी गुम हो जाती है तो कई दिनों तक भी हमारी खुशी हमारे से बहुत दूर हो जाती है। और वो खुशी गुम होने के कारण जो हमारे पुरुषार्थ पर या जो हमारी सेवाएं हम कर रहे हैं, जिस गति से हम सेवाओं को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें सब में फुल स्टॉप कर देते हैं कि अब हमको सेवा भी नहीं करनी है। तो जो सेवा मुझे खुशी दिलाने वाली थी, सेवा बाबा ने कहा ना बच्चे आपको बिजी रखने के लिए बाबा ने खिलौना दे दिया है, तो सेवा हमारे लिए बाबा ने व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए रखा है कि जितना हम सेवाओं में बिजी रहेंगे उतना हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जो संस्कार है वो संस्कार सुधारने के लिए हमें सेवाओं का पाठ मिलता है, क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं तब हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सब कुछ दिव्यता वाला बनाने के ऊपर हम अटेंशन रखते हैं कि हम अलौकिक हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना कैसा होना चाहिए। अगर हम सेवा के फील्ड में आते हैं तो ही इन बातों पर हमारा ध्यान जाता है। तो जो हमारी नई दुनिया है जिसके अंदर हमारे सारे कर्म दिव्य होंगे और वही दिव्य कर्म हमें सदा में खुशियों का अनुभव कराने वाले हैं, तो वो दिव्य कर्म करने की प्रैक्टिस जो है वो हमारी सेवा के द्वारा हो रही है। तो इसलिए सेवा तो जब तक बाबा ने कहा ड्रामा आपको साथ दे रहा है, प्रकृति साथ दे रही है, तब तक आप करते रहो। लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमारा मूल लक्ष्य जो है वो यही है कि आत्मा को संपन्न बनाना है, आत्मा को संपूर्ण बनाना है। और जब संपन्न और संपूर्णता की ओर हम जाएंगे तो हमारी खुशी नेचुरल रूप से हमारे साथ रहेगी। अगर खुशी नहीं है, माना हम संपूर्णता से बहुत दूर है। अभी हमारे पास जो खुशी का एक थर्मामीटर बाबा ने दे दिया है कि आप अपनी खुशी को चेक करो, तो अगर खुशी मेरी बहुत है, माना आत्मा की प्यूरिटी की स्टेज भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जितनी आत्मा प्योर बनती है, देवताओं के चित्रों में हम देखते हैं देवताएं सदा हर्षित मुख दिखाते हैं। अगर किसी देवी देवताओं का चित्र कभी आप लेने गए हो बाजार में और वो चित्र अगर कोई सीरियस मूड वाला हो, सीरियस चेहरा वाला हो, तो आप खरीदोगे उसको? है तो देवताओं का ही चित्र, लेकिन आप चेहरा देख के कहेंगे ना, तो इसमें तो बहुत चेहरा जैसा सीरियस लग रहा है। तो उनकी पूजा करना या उनको अपने सामने रखना, वो चित्र को हम पसंद नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये आर्टिस्ट ने चित्र ठीक नहीं बनाया हुआ है। तो बाबा हमें कहता है कि बच्ची जैसे वो आप कह रहे हो कि आर्टिस्ट ने चित्र ठीक नहीं बनाया है, तो बाबा कहता है जब आप बच्ची अपनी खुशी को गुम करके अपने चेहरे को बिगाड़ते हो ना, तब बाबा कहता है कि बच्ची तुमको जीने की आर्ट नहीं आती है। अगर आपको जीने की आर्ट आ जाएंगे ना, तो आपका चेहरा भी कैसा रहेगा, जैसे खुशी प्रदान करने वाला। तो वो खुशी प्रदान करने वाली जो स्थिति है हमारी, वो स्थिति बनाने के लिए बाबा हमको अंदरूनी गुप्त मेहनत करने के लिए कहता है। और बाबा कई बार कह चुका है कि बच्चे मेरे कई ऐसे हैं जो किसी भी फील्ड में आगे नहीं दिखाई देते, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुप्त पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसे गुप्त पुरुषार्थी जो है, बाबा ने कहा बच्चे बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जिनको ब्राह्मण संसार में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन बाबा के लिस्ट में वो बहुत आगे हैं, क्योंकि उनका गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है। और गुप्त पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ होना है कि हम अपने चित्त को बहुत शांत रखें। कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात चल रही होंगी, लेकिन हम अपने मन को बहुत शांत रख सके। जैसे ड्रामा की पॉइंट्स को हम बुद्धि में रख करके अपने आप को शांत करते हैं। ड्रामा में था ना, तो ड्रामा के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे किसी ने कोई गलत किया, गलत ये किया, तो हम उसके ऊपर कहेंगे भी इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम ड्रामा कह देते तो कहते ड्रामा को तो कोई करेक्शन नहीं कर सकता है, ड्रामा हमारी माँ है, उस माँ को हम करेक्शन नहीं कर सकते, माँ को समझ के लेना होता है। तो हम ड्रामा को समझ लेते हैं, ड्रामा का खेल है, ड्रामा का पार्ट है, और जो ड्रामा में था वो हुआ है, और अभी हमको आगे क्या करना है। जैसे अचानक कोई चीज हमारी चली जाती है, किसी की कोई वस्तु चली जाती है, कोई व्यक्ति चला जाता है, तो वो हम कहते हैं ड्रामा था। आज कोई बहुत अच्छी चीज हमारे पास से लेकिन गुम हो गई, तो मैं एक सेकंड के लिए फील कर लिया कि अरे बहुत अच्छी चीज थी, गुम हो गई, लेकिन फिर दूसरे सेकंड याद कराते कि ड्रामा में था, चलो जिसको मिली होंगी वो खुश हो जाएगा। तो हमने ड्रामा की नॉलेज को याद करते हुए दूसरे किसी को खुशी मिलेगी, इस खुशी में हम भी खुश होंगे। तो ऐसे बाबा के पास एक बार रशिया का ग्रुप आया हुआ था और रशियन भाई बहने बाबा से मिलकर के बहुत खुश हुए। तो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों को कहा कि बच्चे, सभी सभा को कहा कि इन बच्चों को देखकर आप खुश हो रहे हैं। जैसे भी विदेश के भाई बहने भारत में आते हैं तो भारत वाले खुश होते हैं। तो बाबा ने सभा को पूछा, इनको देखकर आप खुश हुए हैं? तो सबने कहा हाँ। तो बाबा ने कहा, क्यों खुश हुए आप? तो क्योंकि बाबा ने कहा, ये जो बच्चे ना खुशी की प्राप्ति के लिए इंतजार में थे, बहुत समय से इनको खुशियां चाहिए थी, और जो इनके जीवन में अप्राप्ति थी वो प्राप्ति बाबा से उनको मिली। और वो जो बच्चे जो थे जो खुशी को ढूंढ रहे थे और उनको खुशी मिल गई, वो खुश हुए, और उनको देख करके बाबा ने कहा, आप बच्चे भी खुश हो गए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, खुशी जो है ना, आप खुश रहोगे तो आपके द्वारा दूसरे को भी क्या मिलेगी, दूसरों को भी खुशी मिलेगी। जैसे कोई बहुत अच्छा आप कोई फंक्शन कर रहे, कोई बहुत अच्छा उमंग उत्साह वाला त्योहार मना रहे, कुछ भी कर रहे हो, माहौल बहुत खुशी का है, लेकिन उसमें एक फैमिली मेंबर का, किसी का मूड उस दिन खराब हो जाए और वो अपना चेहरा उतार के बैठ जाए, और आपका जब भी उसके ऊपर ध्यान जाए, जब भी उसके ऊपर तो नहीं, लेकिन हम बार बार उसके ऊपर ही ध्यान देंगे कि इसको क्या हुआ, ये ऐसा चेहरा करके बैठे हैं। तो जो हमारी खुशियों का माहौल था वो एक नाखुश चेहरे को देखने के बाद सारे खुशियों के माहौल के अंदर परिवर्तन आ जाता है। प्रश्न उठता है क्यों, कि ये नाराज क्यों है, ये दुखी क्यों है? तो मैंने सबकी खुशियों को उसने, एक नाखुश व्यक्ति ने उसको खुशियों को समाप्त कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि अपनी नाखुशी अगर इतनों की खुशियां गुम करा देगा तो ये भी क्या है। सूक्ष्म में हमारे ऊपर बोझ ही चढ़ेगा ना उसका, क्योंकि हमने वायुमंडल को खराब कर दिया, वाइब्रेशन को खराब कर दिया, या जिन्होंने उस खुशियों के माहौल को निर्माण करने के लिए जो मेहनत की, उस मेहनत पर तो पानी फिर गया। तो हमारा खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है, औरों के लिए भी क्यों ना हो लेकिन मुझे खुश रहना है। तो ये जब हम अपने अंदर लक्ष्य रखेंगे, तो जैसे आज हम सुबह शिलू दीदी से सुन रहे थे, बहुत सुंदर दीदी ने हमको अनुभव सुनाए, सुनते सुनते वो सारी फिल्म की रीति से, जैसे वो बाबा की मुलाकात, बाबा के वरदान सब जैसे अपने अंदर ताजे हो रहे थे, सुनते सुनते मुझे भी बाबा के मिले हुए पर्सनल वरदान उस घड़ी याद आ रहे थे। मन खुश हो रहा था कि अच्छा, हमने भी तो ऐसे वरदान पाए हैं बाबा से, ये भी हमारा भाग्य था। जैसे शिलू दीदी कह रही थी, हाथ में हाथ दिया बाबा ने, बहुत स्नेह से हाथ पकड़ा, तो वो सीन हमें अपनी याद आई कि बाबा ने हमें भी ऐसे ही दृष्टि दी थी और ऐसे ही वरदान दिए थे। तो जैसे हम देखते हैं कि वो खुशी हमको अपने अंदर, जीवन के अंदर, बाबा अविनाशी हैं, बाबा ने दी हुई खुशियां भी अविनाशी हैं, और जब भी हम उसको स्मरण करते हैं, जब भी हम उसको याद रखते हैं, याद करते हैं, तो वो खुशी ताजी उतनी हो जाती है जितनी उस दिन हमको मिली थी। तो इतना उसके अंदर पावर है, उस खुशी के अंदर जो हमको बाबा से मिली हुई है। तो वो खुशियां बाबा की मुलाकात की, संगमयुग की सबसे बड़ी प्राप्ति है हम बच्चों के पास, और जो ब्लेसिंग बाबा से हमें मिली हुई है उस सब ब्लेसिंग से ही हम चल रहे हैं। बाबा ने कहा, वरदान जो है ना आपको मेहनत मुक्त बना देता है, लेकिन जब हम वरदान को भूल जाते हैं तो हमारी मेहनत वाली जीवन आरंभ होती है। बाबा ने हमें सहज योगी का वरदान दिया है और हम योग लगाने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। कारण यही है कि हम विस्मृत हैं कि मुझे बाबा ने वरदान दे दिया है, कि बच्चे आप तो सहज योगी हो, तो वरदान की विस्मृति मुझे मेहनत करवाती है। तो योग कठिन लगता है माना, मैंने अपने आप को वो स्मृति नहीं दिलाई है। एक बार अव्यक्त बाप दादा से कोई मिल रहा था, बाबा के सामने खड़ा होकर के उस बहन ने कहा, बाबा मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा मुस्कुराए, तो बाबा ने पूछा, बच्ची अभी लगा है योग? तो कहा हाँ। बोला क्यों, कैसे लगा अभी? बोला बाबा आप सामने हो ना। तो बाबा ने कहा बस यही सदा अनुभव करना कि मैं बाबा के सामने हूँ, बाबा मेरे सामने है तो योग लग ही जाएगा। तो कितनी सहज विधि बाबा ने दे दी है कि हम सदैव अपने आप को यही अनुभव करें कि हम बाबा के सन्मुख हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपको भक्ति के गुरुओं ने क्या किया, सन्मुख से बेमुख कर दिया। और जब बेमुख हो जाते तो हमारी खुशियां गुम हो जाती है, और जब हम बाबा के सन्मुख आ जाते हैं तो वापस हमारी खुशियां हमको लौट के मिल जाती है। तो संगम पर यही बुद्धि में रखना है कि मुझे बाबा के सन्मुख रहना है सदा, मैं सदा बाबा को देखती रहूं और बाबा मुझे देखता रहे। तो यही दृश्य हम अपने अंदर सदैव प्रैक्टिकल में अनुभव करें। भक्ति में भले कहते कि भगवान सबको देखता है, हम कहां भी रहे कुछ भी करें तभी बाबा हमें देखता है, भगवान हमें देखता है, लेकिन ये हम प्रैक्टिकल है ही संगम पर बाबा के साथ। तो ये घड़ियां बहुत सुहावनी हमारे लिए, जो हर पल हम खुशी अपने जीवन के अंदर अपने आप को दिला सकते हैं। तो ऐसी खुशियों के माहौल में, जैसे आज हम देखते हैं कि सारे ब्राह्मण परिवार के अंदर दादियों ने इतनी सुंदर हमारी पालना की हुई है कि एक एक सीन अगर हम याद करें तो हमारी खुशियों का पारावार चढ़ा रहेगा। जैसे कुछ समय दादियों ने देखो, सभी बाबा के जो बच्चे थे, जो 25 साल से ज्ञान में चलने वाले, 50 साल से ज्ञान में चलने वाले, सबका बहुत सुंदर सम्मान कराया, सभी बहुत खुश हुए। कईयों ने तो पहली बार वो चुनरी और ताज पहने थे, बड़े खुशियों में नाचे कि जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारा इतना सम्मान किया। दादी ने ढोल बजवाए, बड़े सुंदर रीति से उनका सम्मान कराया। तो हमने देखा उस समय पर साधारण माताएं, जो भले 25 साल से ज्ञान में चल रही थी, 50 साल से ज्ञान में चल रही थी, लेकिन उनके स्नेह के आंसू जो थे उस घड़ी इतने थे कि जैसे कि बाबा ने शायद उनके, बाबा कहते ना ऐसे स्नेह के आंसू मैं उनके डब्बी में, दिल के डब्बी में रख लेता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि बाबा हमारी इतनी पालना करते हुए भी बाबा हमें इतना सम्मान दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, तो वो बाबा के आगे जैसे बलिहार हो जाते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि बाबा ने हमें क्या कमी रखी है संसार के अंदर, इस ईश्वरी जीवन के अंदर कौन सी अप्राप्ति बाबा ने रखी हुई है, हमने इतना सा किया और बाबा ने उसके लिए बहुत कुछ दिया है। और बाबा भविष्य के लिए भी हमें यही कहता है कि बच्चे एक करो तो तुमको मैं पदम गुणा देता हूँ। आज दुनिया में कौन देने वाला है इतना, एक का एक गुणा भी कोई देने वाला नहीं है, एक का आधा गुणा भी कोई मुश्किल से देगा, लेकिन बाबा हमको कितना दे रहा है, एक का पदम गुणा करके दे रहा है। अगर इन प्राप्तियों को हम बुद्धि में रखें तो हम कर कुछ भी नहीं रहे लेकिन हम प्राप्त कर रहे हैं, ये अगर अनुभूति हमको हमारे साथ रहेगी तो हम सदा खुश रहेंगे। आज एक खुशियों का माहौल है, हम सब बच्चे बाबा के घर में बेहद घर में आते हैं, ये भी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है बाबा के घर में। लेकिन हम देखते कि मधुबन से आने के बाद भी एक हाथ कोई ऐसी एक रिजल्ट निकलती है कि कोई मधुबन से भी नाराज होके पहुंचता है। अरे यहाँ नाराज हुआ मना वो संसार में कहीं भी खुश नहीं रह सकता है। क्यों नाराज हुए? कितने हमको रहने का स्थान ठीक नहीं मिला, फलाने को बहुत अच्छा मिला, हमको अच्छा नहीं मिला। दूसरे के साथ अपनी तेली करते करते उनका 4 दिन का पुरुषार्थ यहाँ जीरो हो जाता है। किसके लिए यहाँ, हम कौन सी प्राप्ति के लिए आए? संसार की सारी प्राप्तियों को छोड़ करके हम बाबा के बने हैं, और जब हम बाबा के घर में आते हैं तो हमारा परिवार है, हमारा घर है। तो जैसे हम देखते हैं घर में जो मेहमान आ जाते हैं तो आप अपना बेडरूम भी उनको खाली करके दे देते हो। साकार बाबा के पास भी जब बच्चे आते थे तो रमेश भाई जी सुनाते थे, मैं बाबा के कमरे में सो जाता था, बाबा कहता था बच्चे इधर आकर के सो जाओ। तो जब बाबा अपने कमरे में भी बच्चों को सुला करके बाबा इतना त्याग करता था, तो आज अगर हमने इस ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण परिवार को चलाने के हिसाब से भी क्यों न हो, बाबा ने कहा ना चलाना भी पड़ता है कई ब्राह्मण बच्चों को, तो उनको चलाने के हिसाब से भी उनको अच्छा प्रबंध दे भी दिया हो तो ये सोचो ना मैं तो सशक्त हूं, वो कमजोर बच्चा है, कमजोर को क्या करना पड़ता है, उसकी परवरिश थोड़ी अच्छी रीति से करनी पड़ती है। तो अगर उस समय पर हम ये सोचे अपना घर है, अपने घर में हमको मैनेज करना है, तो हम अपनी अवस्था को ठीक नहीं करेंगे, ठीक बिगाड़ेंगे नहीं, तो हम देखते हैं कि हम अल्प काल की प्राप्ति कहाँ कहाँ पर अपेक्षाएं रख करके बैठे रहते हैं। तो हम यही सोचे कि हम इन प्राप्तियों को ठुकरा कर बाहर दुनिया में से आए हैं, सारी दुनिया में से हमने उन मान शान की प्राप्तियों को छोड़ करके बाबा के बने हैं, फिर वही भूख और वही प्यास अगर इस ईश्वरी जीवन में लेकर के हम चल रहे हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। और जिसको भगवान के द्वारा खुशी नहीं मिल रही है उसको सारे कल्प में खुशी मिलना कहां तक संभव हो सकता है, क्योंकि शिव बाबा से जो खुश नहीं हुआ वो किससे खुश होगा। तो हमारा कनेक्शन जो है बाबा के साथ ऐसा जुड़ा रहे है कि सारा संसार अलग है, मैं और बाबा अलग हूं और बाबा में ही मेरा संसार समाया हुआ है। तो जब एक बाबा और एक मेरा संसार, अगर ये बहुत अच्छी गहरी अनुभूति हम अपने आप में करते हैं तो हमारी खुशियां बहुत अच्छी बनी हुई रहेगी। लेकिन बाबा ने कहा ना एक के बजाय अगर दूसरा बुद्धि में आ गया तो क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा खुशी में? एक बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी याद आए, व्यक्ति वस्तु कुछ भी याद आए तो हमारे खुशी में फर्क पड़ जाएगा। तो हमारा लक्ष्य जो है ब्राह्मण जीवन का वो हमारा निर्धारित होना चाहिए कि हम बाबा के लिए यज्ञ में आए हैं, बाबा के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं और बाबा सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे ही ताज तख्त तिलक बाबा मुझे देना चाहता है और इसलिए बाबा सब कुछ ये करवा रहे हैं। तो ये सोच करके अगर हम अंदर ही अंदर बहुत बेहद अपने आप को खुशी दिलाएंगे कि ये सब बाबा किसके लिए कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ का विस्तार बाबा ने किसके लिए किया, तो मेरे लिए किया है, मैं संपन्न बनूं, मैं संपूर्ण बनूं, हर रीति से बाबा मेरा पुरुषार्थ कराने के लिए ये सब कुछ करा रहे हैं। तो जब बाबा मेरे लिए करा रहे हैं तो मैं बाबा के लिए क्या कर रही हूं और मैं बाबा के लिए क्या कर सकती हूं, क्या मैं जो कर सकती वो मैंने किया या ये इंतजार किया कि कोई कर रहा है तब मैं करूं, या हम देखते हैं कि कोई कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करें। लेकिन मुझे मेरे लिए बाबा कर रहा है तो मुझे बाबा के लिए करना है, मेरा पर्सनल बाबा के साथ ये कनेक्शन है, संबंध है। तो जब हम बाबा के साथ इस प्रकार से गहरे अनुभव करते हैं तो बाबा कहता बच्चे आपकी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता है, माया भी छीन नहीं सकती, माया को भी कौन सी ताकत है हमारी खुशी को छीनने के लिए। अविनाशी बाप ने हमें अविनाशी खुशियों का भंडार दिया हुआ है, तो ये अविनाशी खुशियां हमें सदैव अपने साथ अनुभव करने का पुरुषार्थ करना है। तो इसके लिए आप बहुत और भी अच्छी तरह से अपने आप के साथ मनन चिंतन भी करना है, जिसके लिए बाबा ने कहा शरीर छूट जाए लेकिन बच्चे आपकी खुशी न जाए। ये एक महावाक्य भी अगर हम अपने बुद्धि में रखें कि बाबा ने कहा शरीर छूटे तो भी आपकी खुशी न जाए, अब हमारे पास तो शरीर छूटने की बात तो अलग है लेकिन छोटी छोटी कोई बातें हो जाती हैं और उसमें हम खुशी को छोड़ देते हैं। तो ये पक्का बाबा के साथ का वायदा हमें बुद्धि में रहे कि बाबा ने हम बच्चों को ये वायदा करवाया है कि बच्चे कुछ भी हो जाए, जैसे गुलजार दादी सदैव वो यही बात कहती थी, कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी खुशी न जाए। तो यही बात अभ्यास हमको गहरा करना है कि कुछ भी हो जाए मेरी खुशी न जाए। अगर कुछ भी शरीर भी छूट जाए, माना शरीर छूटने के बाद अब बचा क्या हमारे पास, भले सब कुछ धन जाए, ये जाए वो जाए, सब कुछ जाए। वैसे भी अभी दीदी अंबिका दीदी ने सवेरे बता दिया कि आने वाली कौन सी परिस्थितियां होंगी, अचानक के पेपर में क्या क्या होने वाला है, कैसी परिस्थिति आने वाली है, ये तो सब होने वाला ही है। तो हम क्यों अपनी खुशियों को गुम करने के लिए अपने आप को ऐसी अपनी नेचर बना लें, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास जो होगा वो अंत में भी हमारे साथ रहेगा। अगर बहुत समय से हमारा अभ्यास है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो खुशी गुम हो गई, तो ये अभ्यास हमारा नुकसान करेगा। लेकिन अभी हमको बहुत समय से ये अभ्यास रखना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। और उसके लिए आपको जितना भी पुरुषार्थ करना हो, मनन चिंतन जो भी करना हो, वो करने के साथ साथ हमें पुरुषार्थ करना है। तो ये जो खुशी का प्रोजेक्ट लिया हुआ है वो उसी लक्ष्य से हमको करना है, और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आप बहुत सुंदर बाबा के महावाक्यों का अध्ययन भी करेंगे, मुरली का अध्ययन भी करेंगे, और अपनी आपकी खुशियों को सदा ऐसे भरपूर रखेंगे। तो यही आप सबके प्रति इस प्रोजेक्ट की शुभ भावना है। और अभी प्रोजेक्ट के बारे में हमारी तनुजा बहन सब बताएगी कि प्रोजेक्ट किस प्रकार से पूरे साल भर चलेगा और उसमें हमें कैसे कैसे पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो कुछ मंथन करके बताया, लेकिन इसमें आपको भी और कुछ नवीनता आ सकती है तो आप उसमें बता सकते हैं। कल फिर से हम इस टॉपिक पर मिलेंगे, तो आप तब तक सोच के रखना कि हम इसमें और भी क्या कर सकते हैं। अभी जब आप सुनेंगे तो उसमें आप अपने और भी नए विचार, नई और कुछ युक्तियां आप उस समय पर शेयर कर सकेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सब खुश हुए क्लास सुन के? हाँ, अपना खुशी का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें दबाना नहीं है। हाँ, खुशी को भी बाहर प्रकट करना है ताकि दूसरे भी खुश हो, एक वातावरण बने, वाइब्रेशन बने। तो किन किन को लगता है कि अभी सतयुग जल्दी आना चाहिए? अभी सतयुग जल्दी आना चाहिए, बहुत थक गए हैं, ऐसे किस किस को लगता है? पहले हाथ खड़ा किया फिर सोचने लग गए। तो यह प्रोजेक्ट तो बहुत सुंदर है और सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समय अनुसार सभी मन से तन से थके हुए हारे हुए हैं, तो सबको वापस पुनः वो स्मृति और वो शक्ति लाने के लिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, द पावर ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की शक्ति। खुशी भी एक शक्ति कब बनेगी? जब वो रेगुलर रहेगी, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तो शक्ति नहीं बनेगी। तो उसके लिए रूटीन में निरंतर चाहिए। इसका एम है खुशी अर्थात प्राप्ति की सुखद अनुभूति। खुशी किससे मिलती है? प्राप्ति से। कोई ना कोई चीज प्राप्त हो तभी हम खुश होंगे, लेकिन यह अनुभूति जो चेहरे से दिखाई दे। कई कहते हैं हमारे अंदर बहुत खुशी है, हम सदा खुश रहते हैं, लेकिन बाहर हमारा चेहरा ही ऐसा है। ऐसा हो सकता है? हाँ, जो अंदर है वो बाहर आएगा ही आएगा। तो अंदर खुश है तो बाहर भी उसको चेहरे तक लाना है। इसका दूसरा लक्ष्य है कि खुशी का पारा, माना जो ग्राफ है, हर हाल में ऊपर की ओर चढ़ता रहे, किसी भी हाल में कम ना हो। ये इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। उद्देश्य है अविनाशी निरंतर खुशी में रहना। अविनाशी निरंतर दोनों शब्द का बहुत ज्यादा यहाँ प्रभाव है, अविनाशी भी हो और निरंतर खुशी में रहना। दूसरा, मैं खुश करे महसूस, मैं खुश हूं इसको महसूस करने के लिए प्रोजेक्ट है। तीसरा है, मैं खुश तो दुनिया खुश। सिर्फ हम खुश नहीं, हमको सबको भी खुश करना है। तो ये तीन हमारे उद्देश्य है। इसका थोड़ा विस्तार इस प्रकार से है कि खुशी की प्राप्ति का कारण है व्यक्ति, वस्तु या वैभव का मिलना। ये सब मिलता है तो हम खुश होते हैं। प्रिय व्यक्ति से मिलना या वस्तु वैभव का मिलना सुखद अनुभूति कराता है, और उसी व्यक्ति से बिछड़ना एवं वस्तु वैभव का टूटना या फूटना या दूर होना दुखद अनुभव कराता है। कहने का भाव, प्राप्ति की अनुभूति सुखद अनुभव कराता है, खुशी देता है, और बिछड़ना, टूटना, फूटना दुखद अनुभव कराता है। अब पुरुषार्थ, हमें साल भर क्या करना है? पुरुषार्थ ये है कि जब कोई खुशियों का मौसम है या कोई त्योहार है या कोई प्रोग्राम चल रहा है, उस समय तो हर कोई खुश होता है। खुश करने के लिए हम कई प्रोग्राम करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ हमारा ये है साल भर बिछड़ना एवं टूटने पर भी सुखद अनुभूति करना। प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने, बीमार होना, मरना या जो भी है उसके बाद भी, या प्रिय व्यक्ति वस्तु टूटने फूटने पर या गुम हो जाने पर भी सुखद अनुभूति करना, खुश रहना। हाँ, ये पुरुषार्थ हमको पूरा वर्ष करना है। जैसे अनजान या परिचित व्यक्ति के मिलन से जो सुखद फायदा या लाभ दिखाई देता हो, उससे भी ज्यादा, दो गुना, तीन गुना लाभ उसके बिछड़ने या वस्तु वैभव के टूटने फूटने में दिखाई दे। थोड़ा समझने में कठिन है। जितना कोई व्यक्ति मिलने पर हमको खुशी होती है, उससे डबल तिबल गुना हमको उसके जाने की बात भी खुशी होनी चाहिए। ये हमारा प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। बहुत कठिन है। उदाहरण दिया है आपको समझने के लिए, बहुत इजी भी है। उदाहरण ये है कि अत्तर की शीशी का टूटना। अत्तर की शीशी टूट गई, लेकिन खुशी क्या हुई? कि वो बंद में तो इतना सुगंध नहीं मिलेगा, या वो थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन टूटने के बाद दो गुना, तीन गुना, चार गुना वो सबको खुशबू फैला के, हाँ, खुश करके जाएगी। मतलब बाबा जिसको कहते हैं कि हर बात में कल्याण है, जो हुआ अच्छा हुआ, हाँ, या ड्रामा, तो इन सब बातों को हमें समझना, उस समय याद रखना, उसके लिए आपको कई युक्तियां बताई जाएगी समय प्रति समय। तो समझ ये कहती है कि व्यक्ति का मिलना ही है बिछड़ने के लिए, ये समझ है ना। वस्तु वैभव का बनना ही है टूटने फूटने के लिए। ज्ञान है हमको ये सब, लेकिन इतना हम अटैच हो जाते हैं ना कि हम ये बात भूल जाते हैं उस समय, इसलिए दुखी हो जाते हैं। उदाहरण, जन्म का होना ही है मृत्यु के लिए, किंतु मृत्यु को समझना ही और उसके लिए खुशी से जीना ही सुखद जीवन का अनुभव करना है। उदाहरण, जैसे एक पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन का एक उदाहरण दिया है। ऐसे अपने जीवन में आए हुए हर व्यक्ति को पोस्टमैन की तरह देखना है, जो दो प्रकार के पत्र लाता है, एक सुखद और दूसरा दुखद। किंतु सुखद देने के बावजूद भी कभी पोस्टमैन को अपने जीवन का हिस्सेदार नहीं बनाते, चाहे वो लॉटरी का या कितना भी खुशी का मैसेज लेके आए तो पोस्टमैन को हम हिस्सेदार बनाते नहीं, वो देके चला जाता है। और दुखद संदेश देने पर उसके प्रति कभी घृणा या नफरत की भावना भी नहीं रखते। ये पोस्टमैन ही नहीं आता तो अच्छा होता, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं, बस वो आके अपना काम करके जाता है तो उसको हम नफरत की भावना से नहीं देखते। उसी तरह अपने जीवन में आए हुए हर व्यक्ति से मिलन मनाते, उसके बिछड़ने का दूसरा पहलू भी अवश्य याद रखे। एक उदाहरण दिया है, एक कहानी है लक्ष्मी और शनि देव की। तो एक बार नारायण जो थे उनके सामने लक्ष्मी जी और शनि देव दोनों आए और उन्होंने कहा कि हम दोनों में सुंदर कौन है आप बताइए। तो अभी नारायण को तो पता है सुंदर तो लक्ष्मी है, लेकिन अगर शनि देव को नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? पता है सभी को, इसलिए नारायण ने बहुत युक्ति से जवाब दिया कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी को पूछा कि हम दोनों में सुंदर कौन है आप बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप थोड़ा यहाँ से दूर जाइए, यहाँ से चल के आप वहां तक जाइए, फिर जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों गए, फिर वापस आए, फिर पूछा कि आप अभी आप बताइए। तो ब्रह्मा जी इतने होशियार, उन्होंने कहा कि शनिदेव जब जा रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे और लक्ष्मी जी जब आ रही थी तभी सुंदर लग रही थी, तो दोनों खुश हुए। तो इस प्रकार से मना हमको युक्ति से अपने जीवन में खुशियों को लाना, प्रॉब्लम परिस्थिति परीक्षा हमारे कर्म के हिसाब से आएगी, उसको युक्ति से कैसे खुशियों को लाना है। तो इसका एक स्लोगन बनाया है मोहन खुशी के संग। मोहन है ना कृष्ण, उसके संग में खुशी है, लेकिन मोह न खुशी के संग। मोह होगा तो खुशी नहीं होगी। लगाओ ना खुशी के रंग, लगाओ ना खुशी के रंग। थोड़ा सोचना इसके ऊपर। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अपने हेड है अलका दीदी और प्रोजेक्ट गाइड है मुकुल भाई जी और कोऑर्डिनेटर है तनुजा बहन और राकेश भाई पुणे के और फैसिलिटेटर है रामाराव भाई और श्यामजी भाई और संपर्क का ईमेल आईडी वगैरह भी दिया है। इसमें पुरुषार्थ क्या करेंगे हम पांच पूरा साल भर में, तो पांच सब टॉपिक लिए गए हैं जो दो दो मास चलेंगे। पहला सब टॉपिक है मनोरंजनमय ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन मनोरंजनमय, मनोरंजक या खुशी से कैसे जिए हम। दूसरा है खुशी के लिए एक्यूरेट दिनचर्या। दिनचर्या ऊपर नीचे होती तो सारा खुशी गुम हो जाती है, तो खुशी के लिए एक्यूरेट दिनचर्या। तीसरा है सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी। चौथा है मनोरंजक योग। योग में हम खुशी से कैसे करें, योग हम खुशी से कैसे करें, जबरदस्ती से कब सफेद लाइट होगा कब गीत बंद होगा, धीरे धीरे बंद भी नहीं करता है साउंड वाला तो ऐसे सोच के वाला योग नहीं, उसमें आनंद मिले, कभी बंद हो जाए कभी सफेद लाइट हो जाए पता ही नहीं चले, ऐसा खुशी वाला योग। और पांचवा है संस्कारों की महारास। हमारे खुशी गुम कहाँ होती है, संस्कारों के टक्कर होते हैं तभी खुशी गुम होती है। तो अब ये जो टक्कर है ना उसको हम महारास में बदली करें, जब रास खेलते हैं तभी भी क्या होता है, डांडियों की टक्कर ही होती है, लेकिन उसमें आनंद होता है। तो यहाँ पे ये पांच सब टॉपिक में हमको पूरे साल भर में अभ्यास करके निरंतर खुशी को बनाना है और उसको बहुत सुंदर ढंग से चलाना है। अभी ये प्रोजेक्ट किन के लिए है, आप सभी सोचते होंगे हम ये प्रोजेक्ट में जाए कि वो प्रोजेक्ट में जाए, तो ये प्रोजेक्ट किन के लिए है। पहला, ज्ञान में चल रहे हैं पर खुशी गायब है। क्लास में आ रहे हैं पर मजबूरी से, सेवा कर रहे हैं पर बहने कह रही है इसलिए, धारणाएं हो रही है पर क्रोध लोभ भी सता रहा है, योग में बैठे हैं पर नेमिनाथ की तरह, हर सब्जेक्ट में चल रहे हैं पर खुशी नहीं है, और है तो सदा खुशी अर्थात निरंतर खुशी नहीं है, उन सबको इसमें आना है। तो सदा खुश तो सभी है ही नहीं है, वो तो सत्ययुग का हमारा पद जो होगा ना वो है संपूर्ण खुशी का, वो पुरुषार्थ हमें करना है। तो हम सभी को ये चेक करना है कि खुशी का पारा मेरा क्या है, उसके लिए खुशी मीटर है, तो वो कल हम चेक करेंगे सभी खुशी मीटर से कि किस किस के पास कितनी खुशी है, वो पारा चढ़ेगा उतरेगा वो मालूम पड़ेगा, वो कल चेकिंग होगी। फिर ये जो बांटा गया है सभी अपने महाराष्ट्र और पूना मुंबई के जोन सब जोन जो है उनको इसका वर्क बांटा गया है, इसके ऊपर वो लोग वर्क करेंगे और करेंगे सारे इंडिया के भाई बहने, सबके लिए है प्रोजेक्ट, लेकिन जो जिम्मेदारी है इसको करने की वो है महाराष्ट्र के ऊपर। तो सबसे पहला जो है सब टॉपिक मनोरंजन में ब्राह्मण जीवन, खुशी से जीना, ब्राह्मण जीवन में खुशी को लाना, ये दिया है अंबरनाथ लोकल चैप्टर को। तो ये शुरू होगा 1 मई से 30 जून तक, 2 महीना। अभी इसमें हम क्या करेंगे, 2 महीना अर्थात 8 सप्ताह आता है, 8 सप्ताह में सबसे पहले हमें इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम भी करना है। हर एक अपने सेंटरों में लॉन्चिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, वीआईपीज को बुला सकते हैं, सारे भाई बहनों को, सबको जरूरत है। वीआईपीज भी इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि खुशी सबको चाहिए। तो एक लॉन्चिंग प्रोग्राम करेंगे और उसमें कुछ एक बातें हैं कि जैसे हमारे सेंटर में जैसे मई महीना है तो मई मास में जिन बाबा के बच्चों को ज्ञान मिला, अलौकिक बर्थडे मनाना है, तो मई मास में जितने भी भाई बहनों का बर्थडे आता है वो एक दिन मनाएंगे, सबका एक साथ खुशी का एक इजहार करेंगे। लौकिक बर्थडे नहीं, अलौकिक बर्थडे, 1 महीने में जितने भी भाई बहनों का आता है एक साथ केक कटिंग करेंगे, और बाकी जो भाई बहने हैं जिनका बर्थडे उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे, उनके गुणों का, उनकी सेवा का वर्णन करेंगे और ये उनको उपहार देंगे। तो ये एक युक्ति है। दूसरा है 2 महीना या पूरे साल भर भी आप अपने घर को बहुत सुंदर सजा के, खुशियों से सजा के रख सकते हैं। कोई भी पूछेगा ये सब क्यों सजाया है, तो क्या बताएंगे, हमारा प्रोजेक्ट है, खुशी का प्रोजेक्ट है। क्यों सजाना है, हमको एक स्टिमुलस होता है ना, एक याद कराने के लिए। तो आपको खुशियों के अच्छे अच्छे स्लोगन, सुविचार, फोटोज भेजेंगे हम, उसको आप प्रिंट आउट करके भी लगा सकते हैं ताकि आप देख देख के भी आपको खुशी आएगी। बाबा का कमरा सजा सकते हैं, तो सजा के रखना, ये कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज है उसको करने से भी खुशियां आती है। उसके बाद फिर अंदर जाना है, डायरेक्ट अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा बाहरी एक्टिविटी से हम भी खुश होते दूसरे भी खुश होते। तो अपने सेंटरों को आप सजा सकते, रूम को सजा सकते, 2 महीना सजा के रखना है कुछ अच्छे फूलों से, स्लोगन से, खुशी के। तो इसमें 8 दिन 8-8 दिन का जो है वो क्या करना है, एक तो पॉजिटिविटी से ही पहली बात है कि पॉजिटिविटी, अगर पॉजिटिव अंदर से नहीं है तो खुशी आएगी नहीं। तो 8 दिन हमको इसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। तो क्या करना है आपको बताया जाएगा हर बार, जैसे कल जयंती दीदी बता रहे थे कि आप पॉजिटिविटी पे प्रोजेक्ट लो, उसमें रिसर्च करो, वो बहुत जरूरी आज के डेट में। तो ये हमको खुशी के लिए एकदम बेस लाइन है। फिर जैसे गीता में है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, इस टैगलाइन के आधार से हमको 8 दिन पुरुषार्थ करना है। फिर विजुअलाइजेशन के साथ सतयुग की जो भी हमारी एक्टिविटी है उसको करना 8 दिन, उसमें जो भी पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, या जो भी 56 प्रकार का भोजन खाते हैं, तो वो 8 दिन हमको उस एक्टिविटी को यहाँ पे लाना, स्वच्छंद। फिर ब्राह्मण जीवन के बचपन के दिन जो हमारे थे उसको याद करके हमने क्या क्या छोड़ा अच्छे से लिखना है। ज्ञान में आने के बाद हमने क्या क्या छोड़ा उसकी भी खुशी होती है, और क्या क्या पाया वो सब लिख करके उसको विजुअलाइज करना। फिर 8 दिन है खुशी के स्वमान, वाह रे मैं, वाह ब्राह्मण परिवार, ऐसे अलग अलग स्वमान लेकर के भी हमको खुशी का अनुभव करना है। फिर 7वां है जैसे फोटो या वीडियो निकलता है उस समय आप कैसे बैठते हैं या कैसे खड़े रहते हैं। हाँ, फोटो वाला जल्दी निकालता नहीं है फोटो, तो भी हम क्या करते हैं, हाँ, जबरदस्ती क्यों ना हो अपने स्माइल को बना के रखते हैं। तो ऐसे हमको स्मृति रख करके सारा दिन हमारा फोटो निकल रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ युक्तियां है जो हमको खुशी दिलाएगी। और लास्ट है दूसरों को सहयोग देने में खुशी, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ में रहते हैं, उनको जो पसंद है वो बना के खिलाना या उनको देना। जैसे एक भाई बता रहे थे कि हमारे घर में किसी को मोबाइल चार्ज करके देते हैं ना, बहुत खुश हो जाते, सबके मोबाइल चार्ज करके देता हूं मैं। हाँ, तो ऐसे छोटी छोटी खुशियां देना, किसी को मुरली की पॉइंट सुनाना, किसी को कोई जो पसंद चीज है वो करना, तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। हाँ, तो ये तो सिर्फ 2 महीने का मैंने बताया आपको, इस प्रकार से तो बहुत सारा है कि जैसे हमको पेमेंट मिलता है उस समय उस डेट में कैसे खुशी होती है। हाँ, जैसे रमेश भाई जी बोलते थे कि बाबा को कि हमारा महीने में सतयुग भी और कलयुग भी है, जिस दिन पेमेंट होता है हमारा सतयुग आता है और लास्ट डेट में जब पेमेंट खत्म हो जाता है तो कलयुग आता है। फिर बाबा ने उनको पूछा संगम युग कभी आता है, तो बोला जिस दिन पेमेंट मिलता है रात भर नींद नहीं आती है तो हमारा जागरण रहता है, सतयुग आता है, संगम युग होता है तभी। तो इस प्रकार से मोबाइल में भी हम डीपी में अपना एकदम अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरे वाला फोटो, एकदम जिससे आपको देख के खुश होंगे, अपना खुद का फोटो रखना, खुशी के गीत का रिंगटोन रखना, ये सब हम आपको भेजेंगे वो करना। इस प्रकार से दूसरा सब टॉपिक है खुशी की एक्यूरेट दिनचर्या खुशी के लिए, तो ये दिया है बार्शी सोलापुर लोकल चैप्टर को, तो उनका भी हमारे दिनचर्या पर कैसे अटेंशन रहे खुशी से, जिसमें अमृत वेला भी खुशी से हो, ट्रैफिक कंट्रोल भी खुशी से हो, तो वो टाइम टू टाइम हमको होमवर्क देंगे और हम सभी को वो करना है। बहुत क्रिएटिव और बहुत अच्छा बनेगा, और आप सभी का भी सहयोग और अनुभव जिसमें साथ देगा। फिर जैसे सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, ये सब टॉपिक दिया है जलगांव सब जोन को, तो ये जलगांव के लोकल चैप्टर करेंगे 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। और चौथा है मनोरंजक योग, यह दिया है नासिक लोकल चैप्टर, जो करेंगे 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक। योग हमारा कैसे मनोरंजक हो, सब चाहेंगे ये करना, तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें एक्टिविटी के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, कमेंट्री के साथ हम आपको भेजते जाएंगे। उसमें खुशी में क्या क्या आता है, शॉपिंग आता है और पार्टी आती है, ब्रह्मा भोजन आता है, बहुत कुछ आता है ना, वो सब करेंगे बाबा के साथ। फिर पांचवा लास्ट है संस्कारों की महाराज। तो 8 दंडिया सबको दिया जाएगा राज करने के लिए, मधुरता, गुणग्राही, फुल स्टॉप, त्याग, सहनशीलता, न्यारा प्यारा, धैर्यता और अंतर्मुखता। ये 8 दंडियों से हमको क्या करना है, राज करना है। जहां जहां टक्कर होता है तो इन गुणों की दंडियों से राज करना है। तो ये करेंगे हमारे, कौन सा जोन है, पुणे सब जोन है। तो पुणे सब जोन करेंगे 1 जनवरी से 29 फरवरी। तो ये प्रपोजल बनाने में हमारी रेशमा बहन महेंद्र भाई ने बहुत अच्छी मदद की है कंटेंट देने में। तो आप सभी भी सोचना, खुशी हमारे जीवन, खुशी ही जीवन है, तो किस तरह इसको अपनाएं। तो कल पैरेलल सेशन में सबको मीटर भी दिया जाएगा और बहुत कुछ बातें और डिटेल में बताई जाएगी। ओम शांति। अभी 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, ये साइड सबको, बहनों को टोली और चाय होगा, भाइयों को वो साइड होगा। 1 मिनट के लिए हम बाबा को याद करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
बाबा तूने बना के अपना हमको महान बना दिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको